आज की ताज़ा खबर। अब आप हमारी कहानियाँ लाइव सुन सकते हो booksthatspeak.com/events। इस पेज पर आने वाले सेशंस के लिए रजिस्टर करिए। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। कबीनी जंगल में कुछ अधूरा सा लग रहा था। मानसून बरसा नहीं था और सफारी जीपों में सवार होकर आने वाले पर्यटक भी अब आ नहीं रहे थे। फिर कबीनी के जानवरों ने इकट्ठा होकर अपनी ही सफारी शुरू की। COVID-19 की महामारी के दूरगामी प्रभावों के बारे में अनोखे विचार की एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कहानी द ग्रेट रिफासा। ओरिजिनल स्टोरी द ग्रेट रिफासा बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है रोहिणी निलेकनी। चित्रांकन संगीता कदूर। हिंदी में अनुवाद पंकज चतुर्वेदी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब तक तो बादलों की बौछारों ने कई बार धरती को ठंडा कर दिया होता, लेकिन ताल तलैये अभी भी सूखे थे। कबीनी जंगल के सभी जानवरों को गर्मी लग रही थी और वो प्यासे थे। एक दिन जानवरों को सब कुछ अजीब सा लगा। सूरज पहले से ही सबसे ऊंचे पेड़ों की फुनगी से झांक रहा था, लेकिन कुछ अधूरा सा था। अपनी सफारी जीपों में सवार पर्यटक आखिर गए कहां? चाहे तेज धूप हो या बरसात, वे तो यहां आना कभी नहीं भूलते थे। इस समय तो इधर उधर दौड़ती भागती गाड़ियों के शोर से सभी को परेशान होना चाहिए था। जानवरों की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। जरूर इंसान यही कहीं होने चाहिए। स्लॉथ भालू अपनी थूथन उठाकर इधर उधर सूंघने लगे। यहां पापा यहां, एक भालू शावक चिल्लाया। डीजल की गंध, डीजल की गंध। पिता भालू ने अपने बेटे से हाथ मिलाया और गहरी सांस ली।
बहुत सही मेरे बच्चे, लेकिन गंध ताजा नहीं है, ऐसे ही कोशिश करते रहो।
पूरे कबीनी में जानवरों ने अपनी सफारी शुरू की। द ग्रेट रिफासा। जानवर मानव पर्यटकों और उनकी जीपों की तलाश में लग गए। उन्होंने इंसानों के सभी पसंदीदा दर्शनीय स्थलों पर खोज करने का फैसला किया। कुछ हाथी और चीतल हिरण कबीनी बांध के पीछे जमा पानी के पास तलाश में लग गए। वे निश्चित ही यही कही होंगे, जानवरों ने सोचा, लेकिन उन्हें वहां कोई जीप नहीं दिखी। सुंदर बाघिन काजल अपने दो बच्चों के साथ मंदिर वाले तालाब की तरफ गई। निश्चित ही वे हमें देखने यहां आए होंगे, उसने सोचा, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें भी हार माननी पड़ी। आज कोई इंसान नहीं दिखा। वे हमें एस आकार वाले मोड़ पर ढूंढ रहे होंगे, चुक्की बाघिन गुर्राई। चलो वहां चलते हैं, उसने अपने तीन शावकों और उनके बड़े भाई की ओर इशारा किया। लेकिन बिजली लाइन तक का पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सभी जानवर कबीनी जंगल के चारों ओर फैल गए। उन्होंने नदी तालाब के पास खोज की। उन्होंने जंगल के सबसे ऊंचे स्थान से लेकर नीचे की सबसे गहरी घाटी तक चहलकदमी की। लंगूर और बॉनेट मकाक बंदर सबसे ऊंचे पेड़ों से झांक रहे थे। चील और बाज बादलों के पार तक उड़कर चलते वाहनों की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें ना कोई जीप दिखी और ना ही इंसान। कहीं से कैमरों की क्लिक 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 ऐसी आवाज भी नहीं आ रही थी। धूप में चमकती कोई दूरबीन नहीं, कुछ भी नहीं। उस रात कबीनी जंगल के जानवर चैन से ना सो सके। अगले दिन और उसके अगले दिन फिर से वही कहानी थी। मनुष्य ना जाने कहां गायब हो गए थे। कुछ देर के लिए कई जानवर इस शांति से खुश थे। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, छुटकारा मिला। अब वे खुलेआम घूम सकते थे और सड़कों पर लेट सकते थे। शिकारी जानवर खुले में शिकार कर सकते थे। हर कोई स्वच्छ हवा में सांस ले सकता था। लेकिन जल्द ही हर जानवर अपनी अलग कहानी बताने लगा। मेरे शावकों को भागना और खेलना पसंद है। कभी कभी इंसान उन्हें मेरे आने से पहले ही ढूंढ लेते हैं। बागिन नामा ने स्वीकार किया। चलो आशा करते हैं कि वे जल्द ही वापस आएंगे। हाथी माँ सहमति से चिंघाड़ उठी। कभी कभी उनसे चिढ़ तो होती थी, उसने कहा, लेकिन वे हमारे लिए जंगल पार करने और कांटेदार पुटुस पौधों से बचने के लिए रास्ते बनाते हैं। हाँ, और मैं कभी कभी उन पर आक्रमण करने का नाटक करता था, युवा दंतैल हाथी तंबू ने हंसते हुए कहा, लेकिन उनके बिना सब कुछ बहुत उबाऊ है। कबीनी के जानवरों ने कुछ करने का फैसला किया। कई वर्षों के बाद जंगल परिषद की बैठक बुलाई गई। सबसे बूढ़े लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर ने कार्यभार संभाला। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा करने के लिए लंगूरों को आदेश दिया। थोड़ी ही देर में जंगल उनकी जोरदार खांसी और चीखों से गुलजार हो गया। एक जरूरी बैठक होने वाली है, सभी को आना है, वे पुकार रहे थे। आप सभी सुरक्षित रहेंगे, कोई शिकारी हमला नहीं करेगा। आइए, सभी बांध के पीछे आ जाइए। एक एक करके सभी जानवर पानी के पास वाले खुले घास के मैदान में जमा हो गए। हाथी और बाघ, हिरन और बंदर, गिलहरी और जंगली मुर्गी, भालू और मिथुन, उदबिलाव और मगरमच्छ। क्या अद्भुत दृश्य था। भोगेश्वर ने कहा, मेरे दोस्तों और हाँ कुछ दुश्मन भी, हम आज यहाँ एक ऐसे संकट के कारण जमा हुए हैं जिससे शायद सभी प्रभावित होंगे। पास के चिड़ियाघर के मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे बताया है कि मनुष्य इस समय एक भयानक बीमारी से ग्रसित है। उसे कोविड-19 कहते हैं। वो इतनी खतरनाक है कि वे अपने घरों में छिपे हैं। पहले वे हमारे जैसे ही थे। उसने अपने आसपास के हाथियों की ओर देखा। वे झुंड में रहते थे, अब उन्हें तुम्हारी तरह बनना होगा। चुक्की, उसने बाघिन माँ से कहा, उन्हें सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना है। शायद वे इसीलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं ताकि हम भी सुरक्षित रहे। क्या आपको नहीं लगता कि वे हमारे लिए भी चिंतित है? ये तय है कि वे जल्द वापस नहीं आने वाले।
इसका मतलब ये हुआ कि हम अब आज़ादी से घूम सकते हैं, स्कारफेस नाम के तेंदुए ने कहा। उस दिन एक जीप लगभग मेरे ऊपर चढ़ी जाती, उसने याद करते हुए कहा।
दोई मृग शावक आगे आई। लेकिन मुझे इंसान पसंद है, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा। वे हमेशा मुस्कुराते हैं और मेरी तरफ हाथ हिलाते हैं। जब वे आसपास होते हैं तो कोई बाघ हम पर हमला नहीं करता। मुझे भी पर्यटक पसंद है, पारा मोर ठुमक कर बोला। वे वास्तव में मेरी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुझे नाचता देख वे कितनी तस्वीरें खींचते हैं?
लंगूर जोर से हंस पड़े। हा 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 हा। ओह, हम उन्हें आसानी से संभाल लेते हैं,
उनमें सबसे बड़े लंगा ने कहा। जैसे ही हम आवाज देते हैं वे हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, अपने बड़े कैमरों को हमारी तरफ कर देते हैं। मैं अक्सर उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए झूठ मूठ की चेतावनी देता हूँ। बहुत मजा आता है।
चलो सच्चाई स्वीकार करते हैं, हमें उनकी याद आ रही है, स्पैनर बाघ ने कहा। कई जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया।
तुम उन्हें याद करते हो?
झाड़ियों से एक व्यंग्यपूर्ण आवाज आई। करिया, विश्व प्रसिद्ध काला तेंदुआ ऐसे उभरा जैसे आकाश से रेशमी परछाई उभरी हो।
माफ कीजिए, मुझे ही उन्हें सबसे ज्यादा याद करना चाहिए। 6 साल से दुनिया भर से लोग मेरे और सिर्फ मेरे लिए यहाँ आते हैं। मुझे बस जमाई लेनी है और कैमरों से गोलियों की तरह क्लिक क्लिक की बौछार होने लगती है,
उसने अन्य जानवरों की ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा।
सफारी में आप लोगों की भरमार है, मैं ही अकेला काला तेंदुआ हूं जिसे इंसान देखने की उम्मीद कर सकता है।
सभी जानवर करिया को देखने लगे जो गिरी हुई लकड़ियों पर छलांग लगाकर आ चुका था। वाकई में वो सुंदर था। उसकी पीली आंखें चमक रही थी, उसकी पूंछ मुड़ी हुई थी। लेकिन इतना अहंकार क्यों? कुछ बाघ मजे ले रहे थे लेकिन तेंदुए नहीं।
लेकिन वे कब लौटेंगे? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती होगी?
स्कारफेस के एक घातक रूप से पूरी तरह अनजान करिया बोले जा रहा था। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया।
तो फिर ठीक है, हम सहमत है कि पर्यटक मनुष्यों से हमें कोई नुकसान नहीं है,
भोगेश्वर ने हुंकार भरी। आओ हम प्रार्थना करें कि वे सुरक्षित वापस आए। हम तब तक अपना रिफासा जारी रखेंगे। कबीनी के जानवरों ने सिर झुका लिया। विशाल हाथियों से लेकर छोटे नेवले के बच्चों तक सभी ने मनुष्यों की कुशलता की प्रार्थना की। जंगल में शांति छा गई। हो सकता है कि कबीनी के जानवरों ने उस दिन कोई जादू किया हो। शहरों और कस्बों में इंसानों को भी जंगलों की कमी खल रही थी। अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने उन जंगली जानवरों की सलामती के लिए प्रार्थना की जिनकी वे सुरक्षा करना चाहते थे। अंततः वैज्ञानिकों ने वायरस से लड़ने के लिए टीका बना लिया, यानी कि वैक्सीन। जब महामारी का असर कम हुआ और लॉकडाउन हटा लिया गया तो प्रकृति प्रेमी फिर से कबीनी की तरफ दौड़ पड़े। उस सुबह कुछ जानवर रिफासा पर थे जब उन्होंने जीपों की पहली गड़गड़ाहट सुनी।
अरे वाह!
हाथियों के झुंड ने सूंड उठाकर गर्जना की, जिससे पूरे जंगल को पता चल गया कि इंसान वापस लौट आए हैं। उस दिन पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया। बाघ, भालू और यहां तक कि मायावी करिया भी जीपों के ठीक करीब आ गए, जैसे कह रहे हो, वापसी पर आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, हमें भी आपकी याद आई थी। जैसे ही मानव सफारी फिर से शुरू हुई, जानवरों ने अपनी ग्रेट रिफासा को समाप्त कर दिया। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, वेबसाइट www.booksthatspeak.com। मिलते हैं और एक अगली कहानी में। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।